हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 56 बहुत ही सुंदर और प्रिय श्लोक है। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाशयः मत् प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम् परमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाशयः मत् प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम् परमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाशयः मत् प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम् परमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाशयः मत् प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम् परमव्ययम्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। शब्दों का अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं सर्व कर्माणि अपि सदा। सर्व मतलब समस्त, कर्माणि मतलब कार्यकलाप को, अपि मतलब यद्यपि, सदैव सदैव कुर्वाणि, कुर्वाणो मतलब करते हुए। अब यहाँ पर भगवान एक दूसरी चीज बता रहे हैं कि आप अपना कुछ भी त्यागो नहीं, जो भी आपके कर्म है वो सदैव करो और उसके साथ क्या करो, मद व्यपाशय यानी मेरे संरक्षण में रहो। उससे क्या होगा, मत प्रसादाद वाप्नोति, मत प्रसादाद, इससे आपको मेरी कृपा प्राप्त होगी और अवाप्नोति यानी प्राप्त करोगे और क्या होगा, शाश्वतम परमव्ययम्। शाश्वत यानी नित्य, पदम मतलब नाम को, अव्ययम यानी अविनाशी, इस प्रकार आप मेरी कृपा से अविनाशी और नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और मन से भौतिक विचारों का परित्याग करेंगे। उसके बाद कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। आज भगवान हमें भक्ति की महिमा के विषय में बता रहे हैं। भक्ति की सर्वोच्च महिमा, सबसे बड़ी महिमा क्या है कि वो आध्यात्मिकता का जो सर्वोच्च शिखर है ना, जो टॉप उसका फ्लोर है, वहां तक जाती है, जहां पर शाश्वतम पदम अव्ययम, वहां तक उसकी पहुंच है। और उसकी दूसरी महिमा क्या है? पहली तो ये कि वो सर्वोच्च शिखर तक जाती है, और दूसरी महिमा क्या है? जिस स्तर पर हम हैं, यानी कि हमें ऊपर आने के लिए बस भक्ति का सहारा ले लिया और फिर हम जिस स्तर पर हैं वहीं से हमें उठा सकते हैं। भक्ति करने के लिए हमें अपने किसी भी कार्य को त्यागने की जरूरत नहीं है, अब संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, अपने कार्यों को त्यागने की जरूरत नहीं है। भगवान ने क्या कहा? सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणी मद व्यपाशय। अपने कार्यों को सदैव करते रहो और साथ में क्या करो? मद व्यपाशय, मेरा आश्रय ग्रहण करो। इससे पहले हम क्या पढ़ के आए हैं? जो विधि है कि भक्ति तक पहुंचने की, कौन सी विधि? भगवान ने क्या कहा? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 48 में भगवान ने कहा, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारम्भा ही दोषेण धूमेनाग्नि दिवाव्रता। प्रत्येक जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें कोई ना कोई दोष होगा, तो अपना जो तुम्हारा नियत कर्म है उसको कभी भी त्यागो नहीं, क्योंकि हर कार्य में सर्वारम्भा ही दोषेण, कोई ना कोई दोष होता है, तो अपना कार्य मत त्यागो और क्या करो? ये कर्मयोग है। और कर्मयोग करते करते आगे भगवान ने बताया, श्लोक नंबर 49 में भगवान ने कहा, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत प्रहा नैष्कर्मीय सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है, फिर कर्म करते करते आप सन्यासी बन जाओ। कैसे? भौतिक भोगों की कोई परवाह नहीं है और वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगा। फिर सन्यास ग्रहण कर लो, पहले कर्मियों के बाद कर्मों से बिल्कुल कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए, समस्त भौतिक भोगों की कोई परवाह नहीं है, तो फिर क्या है? भगवान ने कहा वह सन्यास के अभ्यास से, यहाँ पे बताया ना संन्यास एना भी गच्छति, कर्म फल के से मुक्ति हो मुक्त हो जाएगा और फिर सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त होगा। और वो सिद्धि कौन सी? आगे भगवान ने कहा, सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा नोपि निबोधमे। वो ब्रह्म की सिद्धि को जो प्राप्त करता है, वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे बताता हूँ? समाज एना कौनते है निष्ठा ज्ञानस्य यापरा। वो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, उसमें निष्ठा कहाँ पर होती है? ज्ञान में होती है। और आगे भगवान ने सन्यास की सिद्धि की किस तरह से प्राप्त होती है वो बताए भगवान ने, बुद्धिया विषय दया युक्त, यानी बुद्धि को वश में करना, धृत्यात्मनम नियम्य च मन को नियंत्रित करना, शब्द आदि विषय अंत्यत्वा, शब्द और रूप रस स्वाद गंध इन समस्त विषयों का त्याग, राग द्वेषो विदर्शित, किसी से राग भी नहीं किसी से द्वेष भी नहीं, वो सब बाजू में रखना है। विविक्त सेवी और एकांत की जगह में जाकर थोड़ा खाना है लगवासी। यतत वाक काया मानस, आपने शरीर मन वाणी को नियंत्रित करना है और फिर ध्यान योग में चले जाना है नित्यम। वैराग्यम समुपाश्रता, और इस तरह से वैराग यानी कि सारी भौतिक भावनाओं को समस्त को त्याग देना है, और उसके बाद क्या त्यागना है, विमोच्य अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, इन सबका नाश, उन सबका विमोच्य करना, उन सबको त्यागना है। आगे उससे क्या, निर्ममा, किसी के अंदर कोई भाव प्रेम भाव नहीं रखना है, ममता नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। और उसके बाद भगवान ने कहा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पति, इस प्रकार आप ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होगे। और उस टाइम पर क्या होगा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, आप जब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे न कोई दुख रहेगा न इच्छा। तमन सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम, क्योंकि वो समस्त लोगों को इक्वल समझता है इसलिए उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। किसको, जो संन्यास लेकर ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचता है। और आगे भगवान ने श्री कृष्ण ने बताया श्लोक नंबर 55 में कि भक्त्या माम अभिजानती, इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद जब आप मेरी भक्ति तक आ जाओगे तो मुझे जान लोगे। अभिजानती यावान यश्वास यश चास्मी तत्त्वा, जिस तरह से तत्व से मैं हूँ वैसा जान लोगे। तत्वमान तत्व तो ज्ञातवा विशते तदनंतर, और जब तुम तत्व से मुझे जान लोगे तो फिर वहीं पर विषते तदन अंदरम यानी वैकुंठ धाम में प्राप्त हो जाओगे। इसमें क्या किया, उसने पूरा प्रोसेस किया और आखिर में क्योंकि किसी सबको संभाव रखा और किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है तो फिर वो भक्ति की वजह से वो वैकुंठ धाम में भगवान के यहाँ पर बताया तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। क्यों, केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। और यथारूप में जब जान लेते हैं, जब मनुष्य ऐसी भक्ति को प्राप्त हो जाता है सीरीज में, तो एटलीस्ट वो भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण हमें एक अलग विधि बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आपको अपने कार्य को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, संन्यास की सिद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस शिखर पर हो, जिस जगह पर हो, वहीं पर एक काम करो। क्या करो, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, वो अपने सारे कार्य करते रहो लेकिन साथ में क्या, मद व्यपाश्रय, मेरा आश्रय ग्रहण करो, मेरा संरक्षण ग्रहण करो। उसके बाद क्या होगा, मत प्रसादाद अवाप्नोति, फिर मैं तुम पे कृपा करूंगा। अब पहले, इससे पहले भगवान ने किसी श्लोक में कृपा की व्याख्या नहीं की, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि यदि आप सारा कार्य करते रहो, अपने सारे कार्य करते रहो और सारे कार्यों में केवल भगवान का चिंतन करते रहेंगे, केवल ये सोचकर कि मैं ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो या सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, वानप्रस्थ हो, ग्रस्त हो या ब्रह्मचर्य, जो भी हो, अपना कार्य करो। और साथ में क्या, भगवान ने कहा मद व्यपाश्रय, मेरा आश्रय ग्रहण करो कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ वो तो देखो अब जन्म से नहीं, मेरे कर्मों के अनुसार जो भी मुझे वरण मिला है उसके अनुसार मुझे कार्य तो करना है। अब कार्य करना है वो तो मैं कर रहा हूँ अपने कर्मों के अनुसार जो भी मुझे मिला है, लेकिन क्योंकि मेरा उद्देश्य मुझे पता चल गया, मेरे जीवन का लक्ष्य तुम्हें प्रसन्न करना है, तो ये सारा का सारा कार्य मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। यानी कि आप जो भी सो कर रहे हो उस टाइम पर सिर्फ कॉन्शियसनेस ये रखनी है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। यदि ब्राह्मण वेद अध्ययन कर रहा है, यदि क्षत्रिय युद्ध कर रहा है, यदि व्यापारी जो शूद्र वैश्य है वो व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो जो भी कार्य कर रहा है, शूद्र किसी की सेवा कर रहा है, यदि वो ये सोच कर कर रहा है कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि जब भगवान प्रसन्न होंगे तो मैं आत्मा हूँ तो तभी मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी, तो मेरे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो जब ये मनोवृत्ति चेंज हो जाएगी, जब भावना चेंज हो जाएगी, कृष्ण भावनामृत को हम ग्रहण करेंगे, तब हम जो भी कार्य करेंगे वो भक्ति हो जाएगी। फिर भक्ति के लिए अलग संन्यास लेने की या अलग जगह में जाने की जरूरत नहीं है, फिर वहीं पर जहां पर हम हैं वहीं पर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जो भी भगवान ने बताया, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। वो अविनाशी धाम उसे भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, आपके परिश्रम से नहीं। और कृपा कैसे प्राप्त होती है? प्रेम। जब हम अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में हमें भगवान की भक्ति का मतलब क्या है कि हम भगवान से कितना सिंसियर हैं, हम कितना भगवान को अपने कार्यों में सेंटर में रखते हैं, कितना भगवान को प्रेम करते हैं, कितना उसे याद करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि वो कंटिन्यूस मुझे याद कर रहा है, तो फिर भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं, जिससे अविनाशी धाम यानी गौलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद शुभपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मध्य पाशय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। अब इसका मतलब यहाँ पर जो पहले लाइन का लास्ट शब्द है ना, कुर्वाणी मध्य पाशय, कार्य अपने करो लेकिन मेरा आश्रय ग्रहण करो। तो श्री प्रभुपाद जी उसके विषय में बता रहे हैं कि परमेश्वर का संरक्षण, भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। अब भगवान या उनके प्रतिनिधि के निर्देशन का जो भी हम कार्य करेंगे वो एक ही होगा, क्योंकि प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधि जो शुद्ध गुरु होगा, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरी भक्ति करो। वो भी क्या बोलेगा? भगवान की भक्ति करो। और भगवान क्या बोलते हैं? मध्य पाशय, मेरे संरक्षण में रहो। तो एक ही है, उनका आदेश एक ही है। सिर्फ चूंकि वो गुरु कह रहे हैं तो बोलेंगे कि भगवान का आश्रय ग्रहण करो, और भगवान कह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मद आश्रय, मेरा संरक्षण ग्रहण करो। तो वो क्यों कर रहे हैं? भौतिक कलमश से रहित होने के लिए, क्योंकि अभी क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में हैं, तो बहुत सारे भौतिक कलमश जो है वो हमें हमेशा ग्रस्त करके रखते हैं। लेकिन यदि हम अपने सारे कार्य गुरु और कृष्ण की आदेशों के अनुसार करेंगे, तो सारे जो भौतिक कलमश हैं, जो अपराध हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। और इसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी बताए, ऐसा नहीं है कि आप सुबह के टाइम पर जो कार्य कर रहे हो वो भगवान को अर्पित कर रहे हो, बस सुबह को जो अगरबत्ती कर ली या जो भगवान को प्रणाम कर लिया वो भगवान के लिए कर लिया। भगवान ने कहा सर्व कर्माण्यपि सदा, सारे कर्मों को आप जिस टाइम पर जो भी कर रहे हो, आप भले अपने घर के लिए भी कोई कार्य करो, जैसे कोई मार्केट आप जाते हो, अपने घर वालों के लिए कोई चीज, फ्रूट्स लेकर आते हो, प्रसाद लेकर आते हो, तो पहले मन में ये भाव कि मैं भगवान में ये प्रसाद लेकर जाऊंगा, पहले भगवान को भोग लगेगा। और फिर अगर अपनी फैमिली के लिए भी कोई चीज लेकर जा रहे हो, तो भी ये कि भगवान देखो ये सब जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, वास्तव में आपका दास हूँ, लेकिन आपने क्योंकि अपने दास को ये सब ड्यूटीज सौंपी हैं, तो मैं आपका दास होने के कारण ये सारी ड्यूटीज को अच्छी तरह निभाऊंगा आपकी संतुष्टि के लिए। तो फिर हम जो भी कार्य करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए हो जाएगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई टाइम की सीमा है, यहाँ पर समय की कोई सीमा नहीं है। वो सदा 24 घंटे शत प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्य संलग्न करता है, कंटिन्यूअस कर सकता है ना। वो अपने लिए भी कोई कार्य करता है, जैसे अपने शरीर के लिए भी कोई कार्य कर रहा है, तो क्यों? क्योंकि कृष्ण ने ये शरीर दिया है, मुझे इसकी रक्षा करनी है ताकि मैं इस शरीर के जरिए भगवान की सेवा कर सकूं। बच्चों को पालता है तो इसलिए कि भगवान ने मुझे संतान दी है, मैं इनकी अच्छी एजुकेशन, उनको अच्छा आचरण, अच्छा एजुकेशन दूं, तरबियत अच्छी करूं, ताकि वो आगे जाके भक्ति कर सके। घर की, घर को मेंटेन रखता है, क्योंकि ये घर है, यहाँ पर रहकर हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो इसको मुझे साफ सुथरा रखना है, मेंटेन रखना है। अपने वस्त्र को साफ सुथरा रखता है, ये सोच करके मैं साफ सुथरा रहूंगा तो भगवान की भक्ति के लिए मुझे ना शुद्ध रहना होगा, तो अपने वस्त्रों को साफ कर रहा है, बर्तनों को साफ कर, तो ना जो भी कार्य कर रहा है 24 घंटे में सांस भी लेता है, तो कृष्ण का नाम उस सांस में निकलता है कि मैं कृष्ण को खुश करने के लिए जी रहा हूँ। जीने का केवल एक ही मकसद है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये जी रहा हूँ, तो फिर वो 24 घंटे जो भी कार्य कर रहा है, इवन सोता भी है तो ये सोचकर कि अभी मैं सोऊंगा, मेरे शरीर को ना रिलैक्स मिलेगा, तो मैं सुबह मंगल आरती में उठकर भगवान की सेवा करूंगा। वो अपना कार्य भी कर रहा है लेकिन क्या सोचकर कर रहा है कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। खाता भी है तो मेरे शरीर को यदि पुष्टि मिलेगी तो मेरा शरीर पौष्टिक होगा, न्यूट्रिशन उसको मिलेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो ये कंटिन्यूस 24 घंटे शत प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्य संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पद पर जो कृष्ण माना अमृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। इससे पहले भगवान की दया का प्रदर्शन अभी तक किसी श्लोक में नहीं आया, लेकिन जो कंटिन्यूस कृष्ण माना अमृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस, नॉट चेंज ऑफ द वर्क। आपको अपने कार्य को चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, अपने विचारों को चेंज करना है कि मैं जो कर रहा हूँ ये कृष्ण में तुम्हें संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ। तो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद भगवान अत्यधिक कृपालु होते हैं, भगवान की कृपा दृष्टि हम पर हो जाती है। और आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है हम सोचेंगे कि हम सारा कार्य कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जीवन के जो संघर्ष हैं, वो आते रहेंगे, लेकिन इन संघर्षों के बीच भी यदि हमारी ये कॉन्शियसनेस रहेगी कृष्ण भावनामृत में, हम ये कहेंगे कि कृष्ण जो कुछ भी है तुम्हारी प्रसन्नता के लिए है, यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसमें है तो फिर थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज, जो कुछ भी है मुझे कोई कंप्लेन नहीं है अपने इन सर्कमटेंसेस की, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी मेरे साथ घट रहा है उसके लिए सब आपको प्रसन्न करने के लिए है। तो मेरे शरीर को यदि कष्ट मिल रहा है तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यदि उससे खुश हो तो भले जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं उसके बावजूद भी कृष्ण की कृपा तो उसके साथ ही है। यदि हरिदास महाराज ये सोचते कि नहीं भाई 22 बाजार में कोड़े खाने से बेहतर है कि मैं नाम ही नहीं जप कर रहा हूँ, आराम से नाम जप करूंगा, राजा को बोल दूंगा कि नहीं, लेकिन कृष्ण पर विश्वास पक्का है कि कृष्ण जो है वो कंटिन्यूअस मेरी, जब मैं भगवान को कंटिन्यूअस याद करूंगा तो वो भी हर समय हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो भी यदि वो उसी में खुश है तो बस वो खुश हो जाए खाली, भले मेरी रक्षा नहीं करें, भले मुझे मृत्यु आ जाए कठिनाइयां सहते सहते, लेकिन कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। तो यहाँ पर है इसी का प्रदर्शन कि इस तरह से जब वो कठिनाइयां भले बहुत सारी हो, अंत तो गत्वा अंत में क्या होगा, दिव्य धाम या कृष्ण लोक की प्राप्ति होगी। ये दिव्य धाम साधारण ज्ञानियों के लिए या ब्रह्म ज्ञानियों के लिए या ब्रह्म अवस्था तक पहुंचने वालों के लिए, कर्म योगियों के लिए नहीं है। ये जो गोलोक वृंदावन धाम है वो प्रेमियों के लिए है, और जब भगवान से प्रेम करते हुए अपने हर कार्य में केवल कृष्ण की प्रसन्नता को हम सोचेंगे तो वो शाश्वत अविनाशी धाम। यहाँ पर भगवान ने लफ्ज यूज किया है, पहले कभी अभी तक यूज नहीं किया, भगवान ने कहा शाश्वतम पदम अव्ययम, वो पद जो शाश्वत है, जब संसार के समस्त लोक जो है वो समाप्त हो जाए तो भी वो शाश्वत रहता है। एक इटर्नल लोक जो भगवत धाम है जहाँ कृष्ण रहता है अपने प्रेमियों के साथ, तो उसी को कृष्ण लोक को प्राप्त करता है, वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो जगत कृष्ण प्रेमियों का है तो वहाँ पर जो कृष्ण से प्रेम करेगा उसका आना सुनिश्चित है, ऐसा श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान ने कहा कि ये क्या है, कौन सा धाम है, शाश्वतम पदम अव्ययम, शाश्वत है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि महाप्रलय के टाइम पर वो समाप्त हो जाएगा, महाप्रलय के टाइम पर भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है, अनिश्वर, अवनिश्वर तथा ज्ञानमय होती है, अविनश्वर, यानी कि वहां पर जितनी भी चीजें हैं वो शाश्वत हैं। वहां पर भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान के भक्त, भगवान की प्रेममय लीला, यहाँ पर जो कुछ भी है अविनश्वर, वो शाश्वत है, उनका कभी भी नाश नहीं होता है और ज्ञानमयी है। वहां पर समस्त ज्ञान, सच्चित आनंदमयी जो जगह है, जो धाम है, वो केवल और केवल प्रेम के द्वारा प्राप्त होता है, जब हम समस्त कर्मों में कृष्ण को सेंटर में रखते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। इसलिए भगवान ने बताया, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्प्रपाशयः मत्प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। जब अपने समस्त कार्यों में सदैव मेरा संरक्षण प्राप्त करता है, मुझे अपने संरक्षण में, मेरे संरक्षण में रहता है, तो फिर मैं उस पर कृपा करता हूँ, जिससे वो शाश्वतम पदम अव्ययम्, शाश्वत धाम को, अविनाशी धाम को, मेरे कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।